दूसरा रूप विज्ञान। भाषा विज्ञान की यह शाखा आजकल दो उपशाखाओं में विभक्त हो गई है, शब्द विज्ञान और पद विज्ञान। विभिन्न ध्वनियों के मिलने से शब्द बनता है और जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता धारण कर लेता है अथवा जब वह सुबंत यानी विभक्ति या तृणंत यानी क्रियाचिन्ह से युक्त हो जाता है तब वह पद कहलाने लगता है। जैसे राम, रावण, मारना आदि तो शब्द हैं किंतु जब वाक्य में प्रयोग करने के लिए इनके साथ विभक्तियों, क्रियाचिन्हों आदि का योग कर दिया जाता है तब ये पद बन जाते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ राम ने रावण को और मारा तीनों पद हो गए। इसी कारण रूप विज्ञान के दो उप शाखाओं में से एक को शब्द विज्ञान और दूसरी को पद विज्ञान कहते हैं। क, शब्द विज्ञान। भाषा विज्ञान के इस उप शाखा के अंतर्गत भाषाओं में व्यवहारित उन शब्दों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जो बोलचाल में काम आते हैं तथा जिनका प्रयोग साहित्य में भी होता है। ये सभी शब्द प्रकृति एवं प्रत्यय के योग से बनाए जाते हैं और वाक्यों में प्रयुक्त होकर विविध प्रकार के अर्थों की प्रतीति कराते हुए विभिन्न कार्यों का संपादन किया करते हैं। इन शब्दों के विविध भेद होते हैं किंतु भाव प्रकाशन के लिए यथेष्ट शब्दों का ही चयन किया जाता है। इस तरह शब्द विज्ञान में यह अध्ययन किया जाता है कि शब्दों का निर्माण किस रीति से होता है, शब्दों के कौन कौन से भेद होते हैं, वे किस तरह विकृत होकर भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं, विदेशी आगत शब्द कौन कौन से होते हैं, इन शब्दों में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ करते हैं, इन शब्द परिवर्तनों के कौन कौन से कारण होते हैं आदि आदि। भिन्न भिन्न व्याकरणों ने शब्दों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न रीति से किया है। आचार्य यास्क ने शब्द के चार भेद किए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। जैसे राजा, रानी, रमणी आदि नाम हैं, पट, भाष, लिख आदि आख्यात हैं, प्र, परा, अप, सम आदि उपसर्ग हैं और तू, न, च आदि निपात कहलाते हैं। पाणिनि ने शब्द के दो भेद किए हैं, प्रातिपदिक या सुबंत शब्द और धातु या तिगंत शब्द। राम, रमा, लता, वारी आदि प्रतिपदिक शब्द हैं और पठति, गच्छति, पठन्ति, गच्छन्ति आदि धातु या तिगंत शब्द हैं। अन्य विद्वानों ने शब्दों के 10 भेद स्वीकार किए हैं, परंतु भारतीय विद्वानों ने शब्द के 3 भेद ही स्वीकार किए हैं, संज्ञा, क्रिया और अव्यय। संज्ञा के अंतर्गत ही सर्वनाम और विशेषण आ जाते हैं। कुछ विद्वान तो विशेषण को गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्रिया के अंतर्गत सभी प्रकार के कार्यों का होना या करना आता है। भारत में अव्ययों का अत्यंत विस्तृत विभाग स्वीकार किया गया है। अव्यय का प्रधान लक्षण है कि उसमें लिंग, वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन या रूपांतर नहीं होता। अंग्रेजी में शब्द के 8 भेद स्वीकार किए जाते हैं, नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक, प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक तथा इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द तो भारत के ही समान है और 4 शेष प्रकार के शब्दों को यहाँ अव्यय के अंतर्गत माना जाता है। अंग्रेजी के शब्दों का यह विभाजन यूनानी विद्वानों के देन है, परंतु इन 8 भागों के नाम लैटिन भाषा से लिए गए, अतः ऐसा जान पड़ता है कि रोमन लोगों ने इनमें आवश्यक संशोधन किया होगा। इस प्रकार शब्द विज्ञान के अंतर्गत शब्दों के विविध भेदों का विशद अध्ययन किया जाता है। शब्द विज्ञान में संज्ञा से संबंधित लिंग, वचन, कारक आदि का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में तीन लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तथा तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रचलित थे, परंतु आधुनिक भाषाओं में विशेषतया हिंदी में केवल दो लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तथा दो वचन, एक वचन और बहुवचन का ही प्रयोग होता है। प्राचीन संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि पहले इन भाषाओं में केवल सात कारक प्रचलित थे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। उस समय संबोधन की गणना कारकों में नहीं होती थी, परंतु कालांतर में संबोधन को भी स्वतंत्र कारक मान लिया गया और इसी कारण लौकिक संस्कृत में आकर सात के स्थान पर आठ कारकों की गणना होने लगी। ऐसे ही पहले प्राचीन भारोपीय भाषाओं में क्रिया विशेषण, अव्यय, कृदंत तथा कर्मवाच्य का प्रचलन न था। अब इन भाषाओं में इन तीनों का पर्याप्त प्रचार देखा जाता है। ऐसे ही हिंदी, बंगला आदि अर्वाचीन भाषाओं में काल एवं परसर्ग का पहले प्रचार न था, किंतु आजकल इनको भी पर्याप्त स्थान दिया जाता है। शब्द विज्ञान के अंतर्गत विविध व्याकरणिक शब्दों के अतिरिक्त उन विविध प्रकार के शब्दों का भी अध्ययन किया जाता है जो या तो किसी भाषा के अंतर्गत तत्सम रूप में प्रचलित रहते हैं या कुछ विकृत रूप में प्रयुक्त होते हैं अथवा अन्य भाषाओं के आगत शब्द होते हैं। सुविधा की दृष्टि से हिंदी भाषा के शब्दों को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द, दूसरा भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द और तीसरा विदेशी शब्द। इनमें से भारतीय आर्य भाषाओं के शब्दों को छह भागों में बांटा जा सकता है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा तत्समाभास, चौथा तद्भवाभास, पांचवा देशज और छठा द्विज, जैसे अग्नि, राजा, फल, पुस्तक आदि तत्सम शब्द हैं। आग, कर्म, धर्म, बछड़ा आदि तद्भव शब्द हैं। श्राप, राष्ट्रीय आदि तत्समाभास शब्द हैं। सूक्ष्म, परीक्षा, शिक्षा आदि तद्भवाभास शब्द हैं। घोंटू, लिरिया, घोंदुआ, हंसिया आदि देशज शब्द हैं और अमन सभा, लाट साहब, कांग्रेस मंडल आदि द्विज शब्द हैं। भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्दों में से द्रविड़ भाषा के कोड़ी, पिल्ला आदि शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। विदेशी भाषा के शब्दों में से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच आदि के अनेक शब्द हिंदी में व्यवहृत होते हैं, जैसे कलम, किताब, कुर्सी, बटन, अस्पताल, बाल्टी, अलमारी, स्टेशन आदि। शब्द विज्ञान के अंतर्गत शब्द समूह में घटित परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। तत्सम शब्दों में परिवर्तन होकर तद्भव रूप बन जाते हैं। तद्भव रूप भी विकृत होकर नए नए रूप ग्रहण किया करते हैं और ऐसे विकृत एवं अवरंश रूपों का निर्माण निरंतर होता रहता है। अतः शब्द विज्ञान केवल शब्द रूपों के विविध परिवर्तनों का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु उनके कारणों की भी सम्यक खोज करता है और पता लगाता है कि किस तरह प्राचीन शब्दों का लोप हो जाता है तथा कैसे नए नए विविध शब्दों का आगमन भाषाओं में होता रहता है। ये शब्द कभी तो परंपराओं के लुप्त हो जाने के कारण स्वतः लुप्त हो जाते हैं, कभी रहन सहन में परिवर्तन आ जाने के कारण विकृत हो जाते हैं, कभी ध्वनि की दृष्टि से ठीक ठीक प्रयुक्त न होने पर परिवर्तित हो जाते हैं, कभी अनेक पर्यायवाची शब्दों के प्रचलन के कारण लुप्त हो जाते हैं, कभी अंधविश्वास के कारण विकृत हो जाते हैं और कभी अन्य कारणों से अपने प्राचीन रूप को बदलकर नया रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द अपना अस्तित्व गंवा देते हैं और अनेक नए शब्द उनके स्थान पर अपना अस्तित्व ग्रहण कर लेते हैं। अतः शब्द विज्ञान में शब्दों के विविध परिवर्तनों एवं उनके उचित कारणों का भी सम्यक अध्ययन किया जाता है। इसीलिए शब्द विज्ञान भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ख पद विज्ञान। भाषा विज्ञान की इस उपशाखा के अंतर्गत पद के स्वरूप एवं निर्माण का विशद अध्ययन किया जाता है। प्रायः ध्वनियों के समुच्चय से शब्द बनता है और शब्द समुच्चय से वाक्य बनता है, परंतु किसी भी वाक्य में केवल शब्दों का समुच्चय ही नहीं होता, अपितु उन शब्दों का परस्पर संबंध जोड़ने वाली विभक्तियां, प्रत्यय आदि भी होती हैं। जैसे राम, रावण, वाण, मारना आदि शब्दों का समुच्चय है, परंतु इसे वाक्य नहीं कह सकते। जब इन सभी शब्दों को परस्पर जोड़ने वाली विभक्तियों या प्रत्ययों से संयुक्त करके एक क्रमबद्ध रूप में इस प्रकार रखें कि राम ने रावण को बाणों से मारा, तब यह एक वाक्य होगा। अतः उक्त वाक्य में दो प्रकार के ध्वनि समुच्चयों का प्रयोग हुआ है, एक तो केवल अर्थबोधक शब्दों का और दूसरे इन शब्दों का परस्पर संबंध जोड़ने वाले विभक्तियों या प्रत्ययों का। यहाँ राम, रावण, वाण, मारना आदि तो अर्थबोधक शब्द हैं, जबकि ने, को और से संबंध बोधक विभक्तियां हैं तथा ओ और आ प्रत्यय हैं। इनमें से पहले प्रकार के शब्दों को अर्थ तत्व तथा दूसरे प्रकार की विभक्तियों एवं प्रत्ययों को संबंध तत्व कहते हैं। जब अर्थ तत्व में संबंध तत्व जुड़ जाने के उपरांत तो कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। इस प्रकार राम, रावण, वाण आदि शब्द केवल शब्द हैं, किंतु राम ने रावण को बाणों से आदि पद हैं। उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि शब्द और पद के भेदक तत्व विभक्तियां या प्रत्यय होते हैं। ये विभक्तियां या प्रत्यय ही पद विज्ञान के अंतर्गत संबंध तत्व के नाम से अभिहित की जाती हैं। इनके अतिरिक्त शब्द स्थान, स्वर परिवर्तन, ध्वनि गुण, स्वराघात, अव्यय आदि और भी संबंध तत्व होते हैं, जिनका विशद अध्ययन पद विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इतना ही नहीं, पद विज्ञान में यह भी अध्ययन किया जाता है कि विविध प्रकार के संबंध तत्वों द्वारा शब्द किन किन भावों का बोध कराया करते हैं। जैसे प्रायः भाषाओं के अंतर्गत संबंध तत्व के द्वारा कारक, काल, लिंग, वचन, प्रेरणार्थक क्रिया आदि का बोध होता है। उदाहरण के लिए ने, के, से के लिए का, की, के आदि संबंध तत्व कारकों के बोध होते हैं। आ यानी मारा, गा यानी मारेगा और है यानी मारता है संबंध तत्व क्रमशः भूत, भविष्य और वर्तमान काल के बोधक होते हैं। आ यानी लड़का, ई यानी लड़की संबंध तत्व लिंग के बोधक होते हैं। ओ यानी गाय और ए यानी गाय संबंध तत्व के द्योतक होते हैं। और लिखना क्रिया से लिखवाना, पढ़ना क्रिया से पढ़वाना, बुनना क्रिया से बुनवाना आदि में प्रयुक्त वा संबंध तत्व प्रेरणार्थक क्रिया का बोध कराता है। इस प्रकार संबंध तत्वों का सम्यक अध्ययन करना पद विज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य है। पद विज्ञान के अंतर्गत केवल अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व का ही अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु यह भी देखा जाता है कि धातु, उपसर्ग, परसर्ग आदि का परस्पर क्या संबंध होता है, रूपग्राम क्या है, रूपग्राम का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, रूपग्राम के कौन कौन से भेद होते हैं, संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि में परस्पर क्या अंतर होता है और इस अंतर का कारण क्या है, व्याकरण द्वारा निर्दिष्ट श्रेणी विभाजन कहाँ तक वैज्ञानिक है आदि आदि। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का कार्य पद विज्ञान करता है। इतना ही नहीं, पद विज्ञान केवल पदों या शब्द रूपों के व्याकरणानुमोदित स्वरूपों का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु शब्द रूपों में जो विविध प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं उन सभी परिवर्तनों का भी विशद व्याख्या करता है तथा उन शब्द परिवर्तनों के विविध कारणों का भी अन्वेषण करता है। जैसे रूप परिवर्तन का एक कारण है सरलता। जो कार्य ध्वनि परिवर्तन के प्रयत्न लाघव से किया करता है वही कार्य रूप परिवर्तन में सरलता द्वारा होता है। इसी सरलता के कारण बाह्य से हिंदी में बाहर शब्द बना है, क्योंकि अभ्यांतर से बिगड़कर हिंदी में भीतर शब्द बना है और इसी भीतर के आधार पर बाह्य से बाहर शब्द का निर्माण सरलता से कर लिया गया है। ऐसे ही अज्ञान के कारण दयालुताई, गरीबताई, महानताई, लावण्यता, सौंदर्यता आदि रूप परिवर्तन देखे जाते हैं। ऐसे ही विविध प्रकार के रूप परिवर्तनों के कारणों का विशद अध्ययन पदविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सारांश यह है कि पद क्या है, अर्थ तत्व क्या है, संबंध तत्व क्या है, पद निष्पत्ति में संबंध तत्व का क्या योगदान रहता है, संज्ञा, क्रिया, अव्यय, विशेषण आदि का विभाजन किस आधार पर किया जाता है, लिंग, पुरुष, वचन, काल आदि तत्वों का पद से क्या संबंध है, रूप परिवर्तन किस प्रकार होता है, रूप परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं आदि आदि पद संबंधी विविध समस्याओं का समाधान पदविज्ञान किया करता है। अतएव पदविज्ञान भाषा के शब्द रूपों की सम्यक जानकारी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। तीसरा, वाक्य विज्ञान। भाषा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत विविध पदों से निर्मित वाक्य का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई वाक्य माना गया है। इसका प्रमाण यह है कि एक अबोध बालक सर्वप्रथम वाक्य में ही बोलता है। उसका अट्टी, आनी आदि शब्द संक्षिप्त होते हुए क्रमशः मुझे रोटी दो, मुझे पानी दो के द्योतक होते हैं। अतः जब तक वाक्य का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक किसी भी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती। प्रत्येक मंतव्य, विचार या अर्थ के संप्रेषण के लिए वाक्य का प्रयोग अनिवार्य होता है। व्याकरण के विचार से भी वाक्य उसी शब्द समुच्चय को कहते हैं जो पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट करने की क्षमता रखता हो। इस दृष्टि से वाक्य विज्ञान में वाक्य का विशद अध्ययन करते हुए यह देखा जाता है कि वाक्यों में शब्दों का क्रम क्या होना चाहिए, किसी विशेष पद के लिए वाक्य में विशेष स्थान क्यों निर्धारित किया जाता है, किसी विशिष्ट भाव की प्रतीति हेतु वाक्य में किस पद पर विशेष वलाघात या स्वराघात का प्रयोग किया जाता है, वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं, वाक्य की निष्पत्ति के लिए कौन कौन सी बातें विशेष अपेक्षित होती हैं आदि आदि। प्रत्येक वाक्य के निर्माण हेतु तीन बातें अनिवार्य होती हैं, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। आकांक्षा से अभिप्राय यह है कि जैसे ही शब्द बोला जाता है वैसे ही वक्ता के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यह आकांक्षा होती है कि वाक्य में इस शब्द के आगे कौन सा शब्द आएगा। योग्यता से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वाक्य में जो पद योजना की जाती है वह सर्वथा युक्तिसंगत होनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि कोई यह कह बैठे या यह लिखे कि मोहन पैर से भाषण देता है। आसक्ति से अभिप्राय यह है कि वाक्य के पदों में मध्यवर्ती समय एवं उन पदों के अर्थबोध में व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसे यदि कोई वक्ता मोहन कहकर चुप हो जाता है और फिर 5 या 10 मिनट के बाद रोटी कहता है और उसके बाद भी 5 या 10 मिनट पश्चात खाता है कहता है तो यहाँ वाक्य में आसक्ति का अभाव माना जाएगा। इस प्रकार वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य के अनिवार्य अंगों का सम्यक अनुशीलन किया जाता है। वाक्य विज्ञान वाक्य का पदविन्यास संबंधी अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से करता है। प्रत्येक वाक्य में 2 बातें अपेक्षित होती हैं, उद्देश्य एवं विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है और जिसके द्वारा उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन गांव जाता है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है और गांव जाता है विधेय है। साथ ही वाक्य के निर्माण के लिए पदविन्यास संबंधी 5 बातें और भी आवश्यक हैं, चयन, क्रम, निकटस्थ, अवयव, मैत्री और व्यवस्था। चयन से तात्पर्य यह है कि किसी अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रायः अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। परंतु अभिप्रेत अर्थ की प्रतीति किसी विशेष शब्द या पद द्वारा ही होती है। अतः अनेक शब्दों में से उस एक उपयुक्त शब्द का चयन वाक्य के लिए अपेक्षित होता है। जैसे लहर, विची, उर्मी, तरंग आदि शब्द पर्यायवाची है, किंतु प्रलय काल का वर्णन करते समय उक्त सभी शब्दों में से केवल तरंग का ही चयन किया जाएगा, क्योंकि वही ऊंची ऊंची लहरों का द्योतक होता है। और यही वाक्य ठीक रहेगा कि प्रलय के समय समुद्र में तरंगे उठ रही थी। क्रम से अभिप्राय यह है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि को किस ढंग से रखना चाहिए। संस्कृत में तो क्रम की तनिक भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ तो अहम ग्रामम गच्छामि, ग्रामम अहम गच्छामि, गच्छामि ग्रामम अहम, गच्छाम्यहम ग्रामम आदि सभी वाक्य ठीक हैं और एक ही अर्थ के बोधक हैं। परंतु हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं में क्रम का अधिक ध्यान रखना पड़ता है। हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया होती है। जैसे मोहन रोटी खाता है, ऐसे ही अंग्रेजी में पहले कर्ता, फिर क्रिया और फिर कर्म आता है। जैसे मोहन इट्स ब्रेड। निकटस्थ अवयवों से अभिप्राय उन शब्दों से है जो कर्ता तथा कर्म के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे पंजाबी मोहन बाजरे की रोटी खाता है। इस वाक्य में पंजाबी तथा बाजरे के निकटस्थ अवयव हैं। मैत्री से अभिप्राय वाक्य के उन पदों से है जिनके साथ एक विशेष प्रकार के ही पद आ सकते हैं, अन्य नहीं। जैसे बड़ी बहू आती है और बड़ा भाई आता है। इन दोनों वाक्यों में बहू के साथ बड़ी तथा आती है पद आएंगे, जबकि भाई के साथ बड़ा और आता है पद आएंगे। व्यवस्था से अभिप्राय वाक्य रचना की विशिष्ट पद्धति से होता है। जैसे कुछ वाक्य कर्तृवाच्य होते हैं, कुछ कर्मवाच्य होते हैं और कुछ भाववाच्य होते हैं। मोहन रोटी खाता है, यह वाक्य कर्तृवाच्य है, मोहन ने रोटी खाई, यह वाक्य कर्मवाच्य है, और मोहन से रोटी खाई नहीं जाती, यह भाववाच्य वाक्य है। इस प्रकार वाक्य विज्ञान के अंतर्गत पद विन्यास संबंधी अध्ययन अत्यंत विशदता के साथ किया जाता है। वाक्य विज्ञान में वाक्य के विविध भेदों का ही सम्यक अनुशीलन किया जाता है। वाक्य के अनेक भेद होते हैं। क्रिया के आधार पर दो प्रकार के वाक्य होते हैं, क्रियायुक्त वाक्य और क्रियाहीन वाक्य। मोहन जाता है क्रियायुक्त वाक्य है और आम के आम गुठलियों के दाम क्रियाहीन वाक्य है। रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल वाक्य मोहन पढ़ता है, मिश्र वाक्य यदि मोहन पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, संयुक्त वाक्य जिस दिन मोहन ने पढ़ना आरंभ किया उस दिन उसे यह ध्यान भी नहीं था कि एक दिन वह जिलाधीश हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं, विधि अर्थक वाक्य मोहन पढ़ता है, निषेधार्थी वाक्य मोहन नहीं पढ़ता, प्रश्नार्थी वाक्य क्या मोहन पढ़ता है, आज्ञार्थी वाक्य मोहन पढ़ो, इच्छार्थक वाक्य मोहन तुम्हारा कल्याण हो, संदेहार्थक वाक्य मोहन पढ़ता होगा, संकेतार्थक वाक्य यदि मोहन पढ़ता तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, और विस्मयादि बोधक वाक्य अरे मोहन यहाँ आओ। इस प्रकार वाक्यों के विभिन्न भेदों का सम्यक अध्ययन वाक्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अतः वाक्य में पदों का क्रम क्या होता है, पदों का अन्वय कैसे किया जाता है, पदों के अन्वय के आधार क्या हैं, हिंदी में मोहन जाता है क्यों लिखा जाता है, मोहन जाती है क्यों नहीं लिखा जाता, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आदि आदि विविध प्रश्नों का समाधान वाक्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वैसे तो पद विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान दोनों मिलते जुलते से प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। जैसे पद विज्ञान में केवल इकाई के रूप में प्रयुक्त पदों का अध्ययन किया जाता है, जबकि वाक्य विज्ञान में उन पदों के समूह का अध्ययन किया जाता है। दूसरे पद विज्ञान में संबंध तत्वों द्वारा निर्मित एकाकी पद का ही अनुशीलन किया जाता है, जबकि वाक्य विज्ञान में वाक्य के अंगों का पारस्परिक संबंध, उनके रूपांतर, क्रम, वाक्य भेद एवं वाक्य निर्माण की पद्धति आदि का सम्यक अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि वाक्य विज्ञान भी भाषा के अतिरिक्त जानकारी के लिए अत्यंत उपयोगी है। चौथा अर्थ विज्ञान। प्रत्येक ध्वनि एवं ध्वनियों से निर्मित शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द यदि शरीर है तो अर्थ आत्मा है। पार्वती परमेश्वर की तरह शब्द और अर्थ सदैव संपृक्त रहते हैं। अतः शब्द शरीर का अध्ययन करने के उपरांत अर्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्दात्मा शब्द का सम्यक अध्ययन किया जाता है। अर्थ विज्ञान के अध्ययन की दो पद्धतियां अधिक प्रचलित हैं। प्रथम तो वर्णनात्मक पद्धति कहलाती है, जिसके अंतर्गत किसी भाषा के शब्दार्थों में जो अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थादेश आदि पाया जाता है, उनका सम्यक अध्ययन किया जाता है। जैसे मृग शब्द पहले सभी जंगली जानवरों के लिए प्रयुक्त होता था, परंतु अब हिंदी में अर्थ संकोच के फलस्वरूप केवल हिरण के अर्थ का द्योतक हो गया है। ऐसे ही गोली शब्द पहले किसी गोल पदार्थ का ही वाचक था, परंतु अब अर्थ विस्तार हो जाने के कारण चूर्ण की गोली, दर्जी की गोली, बंदूक की गोली, खेलने की कांच की गोली आदि अनेक अर्थों का द्योतक हो गया है। ऐसे ही महाराज शब्द पहले किसी बड़े राजा या श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु अब अर्थादेश के फलस्वरूप रसोइया का वाचक हो गया है। अर्थविज्ञान के अध्ययन की वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। जैसे हिंदी में शिक्षा शब्द पठन पाठन की प्रणाली के लिए आता है, जबकि मराठी में शिक्षा का अर्थ दंड देना, ताड़न देना आदि होता है। ऐसे ही हिंदी में बदन का अर्थ मुख होता है, जबकि उर्दू में बदन का अर्थ शरीर होता है। ऐसे ही हिंदी में काल का अर्थ मृत्यु या समय होता है, जबकि अंग्रेजी में कॉल का अर्थ पुकार, बुलावा, चिल्लाहट आदि होता है। अर्थविज्ञान के अध्ययन की दूसरी पद्धति ऐतिहासिक अर्थविज्ञान के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत किसी शब्द के अर्थ की ऐतिहासिक परंपरा का पता लगाया जाता है। जैसे कुशल शब्द का प्रयोग पहले ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जो बड़ी चतुरता के साथ बिना हाथ में घाव हुए कुशाएँ तोड़कर लाता था। धीरे धीरे यह शब्द अपने मूल अर्थ से हटकर केवल चतुरता या दक्षता का वाचक हो गया। ऐसे ही गर्भिणी शब्द पहले स्त्रियों एवं पशुओं के लिए समान रूप से प्रचलित था, किंतु कालांतर में भेद करने की आवश्यकता हुई और इसी के परिणाम स्वरूप अब हिंदी में स्त्रियों के लिए तो गर्भिणी शब्द ही अभिष्ट अर्थ देता है, जबकि गाय भैंस आदि के लिए गाभिन शब्द का प्रयोग होता है। इसके लिए तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है और देखा जाता है कि दो या दो से अधिक समकालीन भाषाओं में कोई शब्द किस किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और अंत में आकर उसके अर्थ में क्या परिवर्तन हो गया है। जैसे संस्कृत का भद्र शब्द विकृत होकर कुछ भाषाओं में तो भद्र के रूप में प्रयुक्त होता रहता है और कुछ भाषाओं में भल्ल हो गया। हिंदी में दोनों ही शब्द आ गए, भद्र से तो भद्दा शब्द बन गया और भल्ल से भला शब्द बन गया, किंतु दोनों के अर्थों में कैसा आकाश पाताल का अंतर हो जा गया है। इस समय इस तरह अर्थविज्ञान अपनी ऐतिहासिक पद्धति की द्वारा शब्दार्थों का ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से भी सम्यक अध्ययन करता है। अर्थविज्ञान में उन बौद्धिक नियमों का अनुशीलन किया जाता है जो विविध अर्थ विकारों के बुद्धिगत कारणों को दृष्टि में रखकर बनाए जाते हैं। जैसे पाठशाला, मदरसा, स्कूल, कॉलेज आदि सभी पर्यायवाची शब्द हैं और सभी शिक्षा संस्था के वाचक हैं, परंतु पाठशाला से किसी संस्कृत की शिक्षा संस्था का बोध होता है, मदरसा से किसी अरबी फारसी की शिक्षा संस्था का बोध होता है, स्कूल से किसी अंग्रेजी पद्धति पर आधारित स्कूल का शिक्षा संस्था का बोध होता है और कॉलेज से किसी उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली अंग्रेजी शिक्षा संस्था का बोध होता है। उक्त शब्दों की तरह ही हकीम, वैद्य, डॉक्टर, कविराज आदि शब्द सभी चिकित्सक के द्योतक होते हैं, परंतु इनमें से प्रत्येक वास्तविक अर्थ में पर्याप्त भेद विद्यमान है। अतएव इन अर्थभेदों को देखकर जो बौद्धिक नियम बनाया गया है उसे वैदिकरण का नियम कहते हैं। ऐसे ही और भी अन्य वैदिक बौद्धिक नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका विशद एवं विस्तृत अध्ययन अर्थविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और देखा जाता है कि किस तरह मानव ने अपने व्यवहार के लिए विविध अर्थों के द्योतक शब्दों का निर्माण किया है और वे शब्द किस तरह विविध अर्थों के वाचक शब्द बनकर रात दिन व्यवहार में आते रहते हैं। अर्थविज्ञान के अंतर्गत अर्थविकास की विविध दशाओं का भी सम्यक अनुशीलन किया जाता है और देखा जाता है कि किस तरह किसी शब्द के अर्थ का विस्तार हो जाता है, किस तरह किसी शब्द के अर्थ का संकोच हो जाता है, किस तरह किसी शब्द के अर्थ का उत्कर्ष हो जाता है, किस तरह कोई शब्द अपने अच्छे अर्थ को खोकर बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है तथा किस तरह कोई शब्द अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी नवीन अर्थ को ग्रहण कर लेता है। जैसे तिल शब्द पहले केवल तिल के सार के लिए ही प्रयुक्त किया होता था, परंतु अब इसके अर्थ का विस्तार हो गया है और इसलिए अब सरसों का तेल, गोले का तेल, फूलों का तेल, अंडी का तेल, मिट्टी का तेल आदि अनेकार्थक पर्यायवाची हो गया है। ऐसे ही मूर्ख शब्द फारसी के सभी पक्षियों के लिए आता था, किंतु हिंदू में आकर इसके अर्थ का संकोच हो गया है और यह केवल मुर्गा नामक पक्षी विशेष के लिए व्यवहित होता है। इसी तरह मुग्ध शब्द पहले केवल मूढ़ या बुद्धिहीन के अर्थ का वाचक था, परंतु अब इसके अर्थ का उत्कर्ष हो जाने के कारण इसका अर्थ मोहित हो गया है। ऐसे ही महाजन शब्द पहले श्रेष्ठ नागरिक के अर्थ में प्रयुक्त होता था, किंतु जब से कुछ श्रेष्ठी लोग ब्याज खाने लगे तब से महाजन शब्द का अर्थ पूर्णतया परिवर्तित होकर सुदखोर हो गया है। इस प्रकार अर्थविज्ञान के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन की विविध दिशाओं का सम्यक अध्ययन किया जाता है और अर्थ विकास के विविध भेदों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अर्थविज्ञान में केवल अर्थ विकास के भेदों या अर्थ परिवर्तन की विविध दशाओं का अनुशीलन नहीं किया जाता, अपितु यह भी जानने का प्रयास किया जाता है कि अमुक अर्थ विकास अमुक कारण से हुआ है। जैसे बहुत से शब्दों के अर्थ वातावरण में परिवर्तन हो जाने के कारण बदल जाते हैं। कुछ परिवर्तनों का कारण अशुभ कार्यों के लिए शुभ शब्दों का प्रयोग करना माना गया है। कुछ अर्थ परिवर्तन श्रेष्ठता एवं नम्रता प्रदर्शन के कारण हुआ जाते हैं। कुछ आलंकारिक प्रयोगों का कारण अर्थ बदल जाते हैं आदि आदि। कलम काटना का अर्थ बगीचे में कुछ और होता है, नाई की दुकान पर कुछ और होता है और स्कूल में कुछ और ही हो जाता है। केवल वातावरण के बदलते ही उक्त शब्द अपना अर्थ बदल लेता है। ऐसे ही स्वर्गवास, वैकुंठ लाभ, राम नाम सत्य है आदि शब्द अपना मूल अर्थ छोड़कर दूसरा अपकर्ष सूचक अर्थ केवल इसलिए ग्रहण कर बैठे हैं क्योंकि अशुभ एवं अमंगल के लिए इन शुभ एवं मंगलवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार गऊ, गधा, बैल आदि का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है तो इनका अर्थ परिवर्तित होकर क्रमशः सीधा मूर्ख, कमेरा आदि हो जाता है। इस तरह अर्थविज्ञान के अंतर्गत विविध प्रकार के अर्थ परिवर्तनों के कारण का भी सम्यक अध्ययन किया जाता है। सारांश यह है कि अर्थविज्ञान के अंतर्गत अर्थ क्या है, शब्द और अर्थ का संबंध क्या है, किन किन बौद्धिक कारणों से वस्तुओं के अर्थ निश्चित किए जाते हैं, कौन कौन सी अर्थ परिवर्तन की दिशाएँ होती हैं, अर्थ परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं आदि आदि, इन सभी शब्दार्थ संबंधी विविध समस्याओं का समाधान किया जाता है। यही कारण है कि अर्थविज्ञान भी भाषा विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ। भाषा विज्ञान के अंतर्गत किसी एक भाषा अथवा विविध भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन की विविध पद्धतियाँ प्रचलित हैं। कभी तो किसी एक ही काल के विशिष्ट भाषा के व्याकरणिक रूपों का सम्यक अनुशीलन किया जाता है, इसे भाषा विज्ञान की वर्णनात्मक पद्धति कहते हैं और भारतीय व्याकरणों में प्रायः इसी पद्धति का प्रयोग मिलता है। कभी किसी विशिष्ट भाषा के क्रमिक विकास का इतिहास देखते हुए उसके उद्भव और विकास की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, इसे भाषा विज्ञान की ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। कभी दो या दो से अधिक भाषाओं की तुलना करते हुए उनका वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, इसे भाषा विज्ञान की तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। कभी किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रचलित किसी भाषा के व्यवहारित एवं लोक प्रचारित रूपों का वैज्ञानिक अध्ययन, प्रयोग एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षण आदि के आधार पर किया जाता है, इसे भाषा विज्ञान की प्रयोगात्मक पद्धति कहते हैं। और कभी किसी भाषा विशेष की पूरी संरचना को आधार बनाकर उसके आंतरिक भाग का विश्लेषण करते हुए जब अध्ययन किया जाता है तब उसे भाषा विज्ञान की संरचनात्मक पद्धति कहते हैं। इस प्रकार भाषा विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन की पांच प्रमुख पद्धतियां दृष्टिगोचर हैं। पहला वर्णनात्मक पद्धति, दूसरा ऐतिहासिक पद्धति, तीसरा तुलनात्मक पद्धति, चौथा प्रयोगात्मक पद्धति, पांचवा संरचनात्मक पद्धति। पहला वर्णनात्मक पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत किसी विशिष्ट काल की किसी एक भाषा के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, विभक्ति आदि रूपों की वर्णनात्मक समीक्षा करते हुए उनकी ध्वनि, वाक्य रचना एवं उनके साधु असाधु रूपों का सम्यक अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन किसी एक भाषा के विशिष्टकालीन विशिष्ट रूप के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि इसके द्वारा उस काल में प्रचलित उस भाषा के सभी शिष्ट एवं अशिष्ट रूपों के निर्माण एवं प्रचलन का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भाषा विज्ञान की इस पद्धति को भारतीय व्याकरणों के अंतर्गत भली प्रकार देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में पाणिनि का व्याकरण सर्वथा आदर्श माना जाता है, क्योंकि इसमें संस्कृत भाषा का वर्णनात्मक अध्ययन बड़ी तत्परता एवं तल्लीनता के साथ किया गया है। आजकल भाषा विज्ञान के क्षेत्र में वर्णनात्मक पद्धति की बहुलता दृष्टिगोचर होती है। इसमें किसी एक विशिष्ट भाषा के ध्वनि रूप शब्द वाक्य आदि का वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए नियम निर्धारित किए जाते हैं। यह अध्ययन यद्यपि सीमित एवं विशिष्ट काल तक ही संबद्ध होता है, तथापि इसकी भी अपनी विशेष उपयोगिता है। आजकल कुछ विद्वान वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत किसी भाषा की ध्वनि शब्द रचना रूप विकास वाक्य रचना आदि का अध्ययन तो करते हैं, किंतु अर्थ का अध्ययन इसमें सम्मिलित करना समीचीन नहीं समझते। वे यह भूल जाते हैं कि भाषा की ध्वनि भाषा के शब्द वाक्य रूप आदि तो उसके शरीर हैं और अर्थ आत्मा है। बिना आत्मा या प्राण के जिस प्रकार शरीर अपूर्ण होता है, वैसे ही अर्थ के अध्ययन बिना भाषा के अन्य अंगों का अध्ययन भी अपूर्ण एवं अपर्याप्त होता है। भाषा से अभिप्राय केवल ध्वनि शब्द रूप एवं वाक्य से ही नहीं होता, अपितु उनके अर्थ से भी होता है, और यह अर्थ भाग ही भाषा को सार्थक एवं उपयोगी बनाता है। जैसे यदि हम किसी ध्वनि को सुनते हैं या कोई शब्द सुनते हैं और उसका अर्थ नहीं जानते, तो वह हमारे लिए व्यर्थ होता है और उसकी हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं होती। उसी प्रकार ध्वनि विज्ञान शब्द विज्ञान पद विज्ञान या वाक्य विज्ञान का सम्यक अनुशीलन करने पर भी यदि किसी भाषा के अर्थ ज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाता, तो वह अध्ययन अपूर्ण अनुपयोगी एवं अपर्याप्त ही होता है। भाषा की ध्वनि उसके शब्द पद या वाक्य का जितना महत्व है, उससे कहीं अधिक महत्व उसके अर्थ तत्व का भी है। यदि ऐसा न हो तो पशु पक्षियों एवं मनुष्यों की भाषा में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। यह अर्थ ही वह भेदक तत्व है जिसके आधार पर मनुष्यों एवं पशु पक्षियों की भाषा के अंतर दृष्टिगोचर होता है। अतएव वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत अर्थ तत्व का भी सम्यक अध्ययन होना चाहिए। दूसरा, ऐतिहासिक पद्धति। भाषा विज्ञान की जिस पद्धति में किसी भाषा या भाषाओं के ध्वनि पद रूप वाक्य अर्थ आदि के उद्भव एवं विकास का कालक्रमानुसार अध्ययन किया जाता है, उसे ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। वर्णनात्मक पद्धति में जहाँ किसी एक काल तक सीमित भाषा का अध्ययन किया जाता है, वहाँ ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत विभिन्न कालों में होने वाले किसी भाषा या भाषाओं के रूपांतरों का सम्यक अध्ययन किया जाता है। वर्णनात्मक पद्धति किसी भाषा के सीमित एवं परिमित अध्ययन को प्रस्तुत करती है, तो ऐतिहासिक पद्धति विस्तृत एवं अपरिमित अध्ययन के लिए द्योतक होती है। इसीलिए वर्णनात्मक पद्धति यदि स्थितात्मक होती है तो ऐतिहासिक पद्धति गत्यात्मक होती है, क्योंकि इसमें किसी भाषा या भाषाओं का विकासात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें हिंदी में प्रचलित आग रूप के उद्भव और विकास का इतिहास जानना हो, तो उसके संस्कृत रूप अग्नि प्राकृत रूप अग्नि आदि की ओर दृष्टिपात करना होगा, तभी हम इसके ठीक ठीक रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हिंदी के अनेक शब्दों का उद्भव एवं विकास जानने के लिए हमें संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश आदि भाषाओं के रूपों का भी सम्यक अध्ययन करना पड़ेगा। शब्द रूपों के उद्भव एवं विकास संबंधी काल क्रमानुसार अध्ययन का ही यही कार्य ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। वैसे भाषा तो सदैव परिवर्तनशील होती है और इसमें समय समय पर अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। संसार के प्रत्येक सजीव भाषा परिवर्तन के चक्र से परिचालित होती रहती है। यह परिवर्तन ही भाषाओं के विकास में सहायक होता है। यही कारण है कि किसी भाषा की ध्वनियों शब्दों रूपों वाक्यों आदि अर्थों आदि के क्रमिक विकासात्मक अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। प्रायः भाषाओं के जिस तरह ध्वनियाँ बदलती रहती हैं, उसी तरह शब्द रूप भी बदलते रहते हैं और शब्द रूपों की तरह उनके अर्थ में भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इन सभी परिवर्तनों का विकासात्मक अध्ययन करना ऐतिहासिक पद्धति का ही कार्य है। तीसरा, तुलनात्मक पद्धति। जिस पद्धति के अंतर्गत दो या दो से अधिक भाषाओं के ध्वनियों पदों शब्दों वाक्यों अर्थों आदि की तुलना करते हुए अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, उसे भाषा विज्ञान की तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत उक्त वर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धतियों का ही अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि यदि किसी विशिष्ट काल के समसामयिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इसमें वर्णनात्मक पद्धति का उपयोग होगा, और यदि विविध कालों में विकसित भाषाओं की ध्वनियों, पदों, वाक्यों आदि का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाए तो इसमें भाषा विज्ञान की ऐतिहासिक पद्धति आ जाएगी। इस प्रकार तुलनात्मक पद्धति भाषा विज्ञान का आधारभूत अंग होती है। वैसे भी भाषा विज्ञान का जन्म तुलनात्मक पद्धति के आधार पर ही हुआ है। इस समय पाश्चात्य विद्वानों ने यह देखा कि लैटिन पेटर, ग्रीक पेटर, फारसी पीदर, अवेस्ता पीतर, संस्कृत पित्र, स्पैनिश पैडर, डेनिश फैडर, स्वीडिश फाडर, जर्मन वाटर, पुरानी अंग्रेजी फेडर, आधुनिक अंग्रेजी फादर में पर्याप्त साम्य है। उस समय उन्हें तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर भाषा विज्ञान के आविष्कार की आवश्यकता हुई, और इसी कारण पहले तुलनात्मक भाषा विज्ञान ही इस शास्त्र का नाम रखा गया। बहुत दिनों तक यही नाम प्रचलित रहा और बहुत से प्रसिद्ध ध्वनि नियम तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही बनाए गए। आज भी अनेक भाषा वैज्ञानिक नियम इसी तुलनात्मक पद्धति पर निर्मित होते हैं, क्योंकि विभिन्न भाषाओं की तुलना किए बिना किसी नियम का निर्धारण करना तनिक कठिन होता है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक पद्धति से विषय का बोध भी ठीक ढंग से हो जाता है। इतना ही नहीं, आज तो किसी भी विकसित भाषा का सम्यक अध्ययन करने के लिए इस तुलनात्मक पद्धति का सहारा अवश्य ही लेना पड़ता है। जैसे यदि हम हिंदी की ध्वनियों एवं उनके रूपों का सम्यक अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें ब्रज, अवधि, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली आदि भाषाओं के रूपों का भी तुलनात्मक अध्ययन करना अभिष्ट होगा। तभी हम हिंदी की ध्वनियों, उसके शब्दों आदि का ठीक ठाक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह तुलनात्मक पद्धति ही सिद्धांततः भाषा विज्ञान के यथार्थ रूप की द्योतक होती है। चौथा, प्रयोगात्मक पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत किसी भाषा का क्षेत्रीय कार्य संबंधी अध्ययन किया जाता है। यह भाषा विज्ञान की नूतन मध्य अध्ययन पद्धति है। इसके लिए अध्येता को किसी भाषा के क्षेत्र में जाकर उसके बोलने वालों के निकट संपर्क स्थापित करते हुए भाषा का व्यवहारिक अध्ययन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आज भारत में प्रयोगात्मक पद्धति का क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत होता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने की मांग जोर पकड़ती जा रही है, वैसे ही वैसे उच्च स्तर की पुस्तकों की मांग भी बढ़ रही है, और उसकी पूर्ति के लिए अभी तो उच्च स्तर के अंग्रेजी ग्रंथों का अनुवाद हो रहा है। इस अनुवाद कार्य के लिए जिस पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण हो रहा है वह प्रयोगात्मक पद्धति का ही एक अंग है। ऐसे ही भारत के सभी राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में राज कार्य करने पर अधिक बल दिया जा रहा है, और इसके लिए टंकण यंत्रों की भी बड़ी आवश्यकता हो रही है। इन टंकण यंत्रों के लिए आवश्यक लिपि सूची तैयार करने का कार्य भी प्रयोगात्मक पद्धति के अंतर्गत आता है। ऐसे ही टेली प्रिंटर, यांत्रिक अनुवाद आदि के लिए जिस व्यवहारिक शब्दावली की आवश्यकता होती है उसमें प्रयोगात्मक पद्धति अत्यंत उपयोगी होती है। इतना ही नहीं, आजकल भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अत्यधिक प्रयत्न हो रहे हैं, इसलिए विज्ञान, कानून, इंजीनियरिंग, वाणिज्य, शिल्प, कला आदि संबंधित विविध प्रकार की पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। इस दिशा में भी भाषा विज्ञान के प्रयोगात्मक पद्धति अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके अतिरिक्त विविध कवियों, लेखकों आदि की भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन तथा विविध छंदों का ध्वनि वैज्ञानिक अध्ययन आदि भी प्रयोगात्मक पद्धति के क्षेत्र में ही आते हैं। इसके लिए पूर्ण सज्जित प्रयोगशाला की भी आवश्यकता होती है, जिसमें काइमोग्राफ, लैरिंगोस्कोप, एंडोस्कोप, कृत्रिम तालु, आइसोग्लास, फोनोस्कोप, ब्रीदिंग फ्लास्क, स्पिरोमीटर, स्टेथोग्राफ, न्यूमोग्राफ, एक्सरे आदि यंत्रों की आवश्यकता होती है, और इनके माध्यम से किसी भाषा के ध्वनियों, बोलियों एवं उच्चारणों का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करके उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भाषाओं के प्रायोगिक अध्ययन की दृष्टि से भाषा विज्ञान की प्रयोगात्मक पद्धति अत्यंत उपादेय है। पांचवा, संरचनात्मक पद्धति। भाषा विज्ञान के अध्ययन की संरचनात्मक पद्धति से तात्पर्य यह है कि किसी भाषा का अध्ययन एवं परीक्षण उसकी गठनात्मक पद्धति के आधार पर किया जाए। प्रत्येक भाषा में जो समस्थायी तत्व होते हैं उनका पारस्परिक संबंध भाषा के संरचना पर ही आधारित होता है। अतएव जिस प्रणाली द्वारा किसी भाषा का विश्लेषण एवं विवेचन उसकी संरचना को आधार बनाकर किया जाता है उसे संरचनात्मक पद्धति कहते हैं। यह पद्धति कुछ कुछ वर्णनात्मक पद्धति से साम्य रखती है, परंतु इन दोनों पद्धतियों में बड़ा अंतर है। जैसे वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत किसी भाषा के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि रूपों की पृथक पृथक वर्णनात्मक समीक्षा की जाती है, जबकि संरचनात्मक पद्धति में भाषा के इन सभी रूपों की पारस्परिक संबद्धता को आधार बनाकर अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही वर्णनात्मक पद्धति में भाषा संरचना को किसी विशेष प्रयोजन के रूप में अंगीकार नहीं किया जाता है, जबकि संरचनात्मक पद्धति में इसे सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार वर्णनात्मक पद्धति में संरचना के तत्वों का अध्ययन निरपेक्ष दृष्टि से किया जाता है, जबकि संरचनात्मक पद्धति में संरचना तत्वों का अनुशीलन सापेक्ष दृष्टि से किया जाता है, क्योंकि यहाँ उनकी पारस्परिक संबद्धता पर ही दृष्टि केंद्रित रहती है। अतः वर्णनात्मक पद्धति जहाँ भाषा के अंग, ध्वनियाँ, लिखित संकेत आदि का एकाकी रूप में अध्ययन प्रस्तुत करती है, वहाँ संरचनात्मक पद्धति इन सबके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन प्रस्तुत करती है, और तभी हमें इनके अस्तित्व की सार्थकता का सम्यक बोध होता है। यही कारण है कि आजकल भाषा विज्ञान इस संरचनात्मक पद्धति का प्रचार एवं प्रसार अत्यंत द्रुत गति से हो रहा है।